दूसरा राजा अध्याय तीन पद एक। यहूदा के राजा यहोशोपात के 18वें वर्ष में आहाब का पुत्र यहोराम शमरोन में राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। यहोराम आहाब का दूसरा पुत्र अब राजा बना। यहोशोपात अब भी यहूदा का राजा था। उसने 12 वर्ष तक राज्य किया। अध्याय तीन पद दो और तीन में। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। तो भी वो नाबात के पुत्र यरोबाम के ऐसे पापों से, जैसे उसने इसराइल से भी कराए, लिपटा रहा और उसे ना फिरा। मोआब यर्दन नदी के पार का स्थान है, जो आज जॉर्डन कहलाता है। वहां के राजा ने इसराइल से विद्रोह किया। वो उनका अधीनस्थ राज्य था और इसराइल को मोआब 100,000 भेड़े और 100,000 बकरियां हर वर्ष कर स्वरूप देता था। इसराइल उनको जीतकर उनके लिए ये भुगतान ठहराया था। मोआब के राजा ने विरोध में विद्रोह किया, इसलिए यरोबाम ने सारे इसराइलियों को तैयार किया और यहूदा के राजा यहोशोपात के पास भेज दिया कि वे मोआब के साथ युद्ध करें। उसने कहा, निश्चय ही जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूं, मेरे आदमी तुम्हारे आदमी है। इसलिए उसने कहा, हम किस रास्ते से जाएंगे? और उन्होंने कहा, चलो हम एदोम की ओर से चले। वे लोग दक्षिणी छोर से आक्रमण करने की योजना बनाकर चले और एदोम का राजा उनके साथ था। इसलिए उन्होंने ये यात्रा आरंभ की। वे मृत सागर के दक्षिण में एदोम से होकर यर्दन नदी के दूसरी ओर उत्तर से मोआब पर आक्रमण करने निकले और एक निर्जन प्रदेश में आ गए। अध्याय तीन पद नौ से लेकर 13 तक। तब इसराइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला। और इसराइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशोपात ने कहा, क्या यहां यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इसराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हां, शापात का पुत्र एलिशा, जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वो तो यहां है। तब यहोशोपात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इसराइल का राजा और यहोशोपात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलिशा ने इसराइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यद्वक्ताओं और अपने माता के नबियों के पास जा। एलिशा का इसराइल के राजा से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि उस देश में मूर्ति पूजा होती थी। अध्याय तीन पद 13 से लेकर 20 तक। इसराइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा ना कह, क्योंकि यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलिशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा, जिसके सन्मुख में उपस्थित रहा करता हूं, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशोपात का आदर मान ना करता, तो मैं ना तो तेरी ओर मुंह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। अब कोई बजवैया मेरे पास ले आओ। जब बजवैया बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलिशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और इसको हल्की सी बात जानकर यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नाश करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। बिहान को अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। ऐसा मृत सागर की बड़ी दरार के कारण होता है। गर्मी के दिनों में वहां अचानक वर्षा के पानी की तेज धार बह निकली है, जैसे रेगिस्तान में वर्षा के बाद पहाड़ों से पानी बहकर आता है। आप रेगिस्तान से गुजर रहे हो और बादल पहाड़ों पर फट जाए तो नीचे का स्थान पानी से भर जाएगा। चाहे जहां आप हो वहां वर्षा ना हुई हो, नीचे का स्थान पानी की भारी नदियों के तरह हो जाता है। ऐसा ही वहां हुआ। उन्होंने वर्षा नहीं देखी, उन्होंने वायु की आवाज नहीं सुनी, तो भी घाटी पानी से भर गई जो एदोम की ओर से बहकर आया था। अध्याय 3 पद 21 और 22। ये सुनकर कि राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है, जितने मुआबियों की अवस्था हथियार बांधने योग्य थी वे सब बुलाकर इकट्ठे किए गए और सिवाने पर खड़े हुए। बिहान को जब वे उठे उस समय सूर्य की किरणें उस जल पर ऐसी पड़ी कि वो मुआबियों की परली ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा। सुबह सूर्य लाल दिख रहा था और उसका प्रकाश पानी को भी लालिमा प्रदान कर रहा था। उन्होंने कहा, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर तलवार चलाई होगी और लड़ते रहे होंगे, चलो हम चलकर उन्हें लूट ले। और वे भागते हुए पहुंचे कि लूटे, परंतु यहां ये लोग प्रतीक्षा में घात लगाए बैठे थे, अतः उन्हें मार लिया और इस तरह मुआबी हार गए। उन्होंने शहर में जाकर सब नष्ट कर दिया।